सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज यहाँ राजस्थान के इस टोंक शहर में कुछ वर्षों के बाद आने का अवसर मिला है। जैसा कि राजस्थान के इस यात्रा में स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ पर भी जाने का मौका मिला है, वहाँ वहाँ ही कई कई बरस के बाद ही आने का मौका मिला। जयपुर के अलावा चाहे वो केकड़ी हो या फिर बूंदी हो या सवाई माधोपुर हो या फिर ये टोंक शहर हो, सभी जगह पर काफ़ी लंबे अरसे के बाद, कहीं 11 बरस कहीं 9 बरस इस तरह के वक्फे हुए हैं। जबकि यहाँ आने का अवसर मिला, यूँ तो साल में राजस्थान में कहीं ना कहीं जाने के अवसर बनते रहते हैं। अभी पीछे ही अक्टूबर के महीने में चूरू, सीकर, पिलानी जाने का मौका मिला था, और उससे पहले इसी साल के आरंभ में पावटा और अजमेर इत्यादि, उदयपुर इत्यादि स्थानों पर जाने का अवसर मिला था। तो अभी भी इस राजस्थान की यात्रा में जहाँ जहाँ भी जाने का मौका मिला तो बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। ऐसे भक्ति के रंग में रंगे हुए, जैसे ये लिबास और पगड़ियाँ कितने रंग बिरंगी हैं, तो ये तो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं वस्त्रों के, कपड़ों के, जो बहुत सुंदर नज़र आते हैं। लेकिन दरअसल एक रंग ऐसा है जो इनके मनों पे चढ़ा हुआ है, वो है नाम का रंग, भक्ति का रंग, और उसकी अपनी खूबसूरती है। दरअसल भक्ति का रंग जिस पे चढ़ जाता है उसी के जीवन में निखार आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसी रंग में रंग कर अपने मन को भक्तजन शोभायमान हो रहे हैं, और इस संसार के सामने भी ये भक्ति वाला पहलू उजागर कर रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि वाकई इंसान सही मायनों में भक्ति करने का सलीका तुझे आ जाए। कि भक्ति कहते किसको है? भक्ति कोई लिबासों का नाम नहीं है, ना इमारतों का नाम है। भक्ति कोई पहरावों का नाम नहीं है। भक्ति एक ऐसी अवस्था है मन की, जहाँ पर समर्पण होता है, जहाँ पर प्रेम करुणा का भाव होता है, जहाँ पर विशालता सहनशीलता होती है, जहाँ पर कृतज्ञता और एक शुक्राने का भाव होता है। तो वो एक भावनाएं हैं ऐसी जो वास्तविकता में दर्शाती है कि ये भक्त है। संसार ने ये मान लिया कि बाहरी लिबास इस रंग के पहन लो तो भक्त हो जाओगे, सर पे टोपी या पगड़ी पहन लो तो भक्त हो जाओगे, यात्राएं कर लो, स्नान कर लो, माला फेर लो, शरीर को सुखा लो, चंदन के लेप लगा लो, तो इससे भक्त हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष संत जनों ने पहले भी ये भाव रखे हैं, ये स्पष्ट किया है कि एक इंसान तेरे मन में तो वैर ईर्ष्या भरी पड़ी है, तेरे मन में तो लोभ लालच भरा पड़ा है, तेरे मन में तो खुदगर्जियों का भाव है, तेरे मन में तो जलन की भावना है, दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, दूसरे को बढ़ता फूलता देखना गवारा नहीं है तुझे, तो इस प्रकार से मन में तेरे कुछ और है। इसीलिए कहा कि बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान, कि बाहर तो ज्ञान ध्यान और स्नान की रूप हमें नज़र आते हैं, क्यों पानी में मल मल नहाए मन की मैल गंवारे बंदे। कि एक शरीर तो स्वच्छ हो गया लेकिन मन में क्या है, कबीर जी ने इसीलिए कहा कि मन का कर का मन का डार दे और मन का फेर, कि कर का मन का डार दे, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का फेर, कि माला फेरत जुग भया, सारी उम्र फेरते रहे। लेकिन सवाल है कि मन का भी वो भी फेरा के नहीं फेरा है, मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काहे, जो किच किया सो मन किया मुंडा मुंड अजाए। कहते हैं कि मुंड तो मुंडवा लिया और सोच लिया कि मैं इससे भक्त हो गया, मैं इससे परमार्थी हो गया, प्रभु की निगाह में मैं परवान चढ़ गया। लेकिन कबीर जी क्या कह रहे हैं कि कबीर मन मुंडिया नहीं मुंड मुंडाए काहे, जो किच किया सो मन किया मुंडा मूड अजाए। कि मन के ऊपर तो विकार रूपी बाल अभी भी कायम है, लेकिन सर मुंडवा लिया उसके बाल तो साफ कर लिए, लेकिन मन के ऊपर विकार रूपी जो बाल हैं वो तो अभी भी कायम है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मन मुंडिया नहीं, कि मन को मुंडना है, इस मन को निर्मल करना है, मन में प्रेम भाव भरने हैं। जैसे वो शायर ने कहा है कि होता नहीं दोस्त हर हाथ मिलाने वाला, कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हो सकता है। उसका कारण शायर के जहन में ये है कि हाथ तो अनेकों मिलाते हैं, लोगों को दिखा भी देते हैं, देखो मैंने हाथ मिलाया है, लेकिन मन में उसके एक के क्या विचार चल रहा है कि 10 आदमियों के सामने में तेरे से मैंने हाथ मिलाया है, लेकिन आज तो जिंदा घर नहीं पहुंचने वाला है, सब इंतज़ाम किया हुआ है। यानी कि मन में कुछ और चल रहा है, बाहर दिखाने को हाथ मिलाए जा रहे हैं। वही शायर कह रहा है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, यानी कि इंसान के अंतर क्या चल रहा है, इंसान का बाहरी सिलसिला क्या है। वही बात परमार्थ में कबीर जी भी यही कह रहे हैं कि बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान, अंतर तो हिरसी कुत्ता बैठा हुआ है, मन में तो लोभ और प्रलोभन बैठे हुए हैं, मन में तो पता नहीं कैसी कैसी विपरीत भावनाएं स्थापित हैं। लेकिन बाहर तो बात हो रही थी भक्त और भक्ति की पहचान, कि भक्ति कहते किसको हैं, भक्त होता कौन है, ये सब पहचान, ये वास्तविकता में भक्त जो सही मायनों में इस रंग में रंगे होते हैं, जो इस मालिक खालिक निराकार परमात्मा को समर्पित रहते हैं, जो आठों पहर इसका एहसास करते हैं, जिनको यही नाम का भक्ति का रंग भाता है, जो इस संसार के तुल्य इसको विशेषता देते हैं, जैसे मीराबाई ने दी कि तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोई, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो होए। कि मीराबाई भी फिर ये बाहरी सिलसिलों को की बनिस्बत इस पहलू को विशेषता दे रही है कि जो मैंने पाया है, जो मेरे हिस्से में आया है, उसको विशेषता, उसको अहमियत। यानी कि भक्तों को यही सत्य भाता है, इनको ये भक्ति भाती है, ये प्रेम भावना को विशेषता देते हैं, ये नफरत का भाव मन में पैदा नहीं होने देते हैं। इनके फिर केवल शब्द नहीं होते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, फिर वो केवल शब्द नहीं है, वहाँ पर मन करके भी सबका भला मांगा जाता है। वरना ऐसी ऐसी मिसालें भी आई हैं कि धर्म स्थान पे हाथ जोड़े सारे बोल रहे हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, और हर किसी की ज़ुबान यही प्रार्थना में शामिल है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, लेकिन मन में यही होता है कि प्रभु पड़ोसी का कर दो सत्यानाश। तो इस प्रकार से ये भक्त जन ये एक मन से भी भला मांगते हैं, केवल शाब्दिक नहीं, केवल जुबान नहीं, बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है। अफसोस के केवल बातों से कुछ हासिल नहीं होता, कि अगर बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है। बात जुबान से आप शब्द का सहारा लेकर दौलत का जिक्र करते रहें, अगर दौलत के जिक्र से ही अमीर हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में इतनी गरीबी क्यों नज़र आती। अफ्रीका में जहाँ पर हिंदुस्तान से भी कितनी ज़्यादा बदतर हालत है, हालांकि हिंदुस्तान में प्रगति हुई है, आगे बढ़े हैं ज़रूर, लेकिन फिर भी कितनी कितनी मजबूरियाँ कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं, लाचारियाँ। यानी कि अगर दौलत के जिक्र से ही कोई अमीर हो जाता है तो फिर तो कोई भी गरीब ना हो, लेकिन दौलत का जिक्र केवल अमीर नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से खांड ही का नाम ले तो मुख कैसे मीठा हो, मुख पुण्य मीठा हो खांड के चबान से। अगर शक्कर और गुड़ का जिक्र ही करते रहे तो मुख मीठा होने वाला नहीं है, वो शक्कर डालनी पड़ती है। कभी आप चाय मंगाएं या दूध मंगाएं और उसमें शक्कर ना डाले घर वाले या ना ढाबे वाला, तो आगे से आप कहें कि फीका है, आगे से ढाबे वाला या घर वाले कह दें कोई नहीं शक्कर का रिटर्न कर लो मुख मीठा हो जाएगा। नहीं, हम जानते हैं कि जब तक शक्कर उसमें डाली नहीं जाएगी तो चाय या दूध मीठा होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से खांड ही का नाम ले तो मुख कैसे मीठा होत, मुख पुण्य मीठा होत खांड के चबान से। तो इस प्रकार से केवल बातों से बात बनने वाली नहीं है, वही बात यहाँ पर महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कि ये मन जब तक शामिल नहीं होता है, जब तक इस मन में ये रंग नहीं चढ़ता है, अगर मन इसमें भीगा हुआ नहीं है तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। फिर तो अपने आप के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि प्रभु के साथ तो खिलवाड़ किया ही नहीं जा सकता है। ये तो घट घट के और हमारे एक एक विचार रोम रोम से वाकिफ है, हमारे ख्यालों से वाकिफ है, कार है, ये अंतर बाहर की जानता है। तो खिलवाड़ इससे कर रहा है इंसान, सोचता है, लेकिन दरअसल अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नुकसान इसका नहीं कर रहा है, नुकसान अपना कर रहा है। ऐसा करके जैसे कि सूर्य निकला हुआ हो और कोई कंबल तान के लेट जाए तो उससे वो सूरज का तो क्या नुकसान कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जन कहते हैं कि अगर इंसान को ये समझ में नहीं आई बात कि परवानगी कहाँ कैसे चढ़ती है, कौन सी भक्ति परवान होती है, कौन सी भक्ति भक्ति कहलाती है, कौन भक्त दई सही मायनों में होता है, जब तक यही बात समझ में ना आई तो फिर इंसान धोखे में ही रहता है, फिर इंसान किसी भ्रम में पल रहा है और वही भ्रम उसको ले डूबते हैं। तो महापुरुष संत जन इन भ्रमों को दूर करने के लिए ही अपने आप को मानवता के काम में लाते रहे हैं कि इंसानों के ये भ्रम और भ्रांतियाँ मिटें, ये हकीकत जानें, ये सच्चाई जानें, ये सत्य क्या है, सत्य का रूप क्या है और इस सत्य की प्राप्ति किस विधि होती है। वो विधि भी बताते हैं कि इस विधि ये सत्य की प्राप्ति हो जाती है और फिर इसी सत्य का आधार लेते हुए, इसी सत्य को हृदय में बसाते हुए, इसी सत्य के एहसास में जीवन का ये सफ़र ये तय होता चला जाता है। ये जान जाते हैं कि ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार है, ये शाश्वत है, ये कायम दायम है, ये सर्वत्र समाया हुआ है, ये कण कण में व्याप्त है, जमीन जमा के बिखे समस्त एक ज्योत है, कि जमीन जमा में यही एक ज्योति है जो विराजमान है। जलस्थ हुई थलस्थ हुई, जल में भी तू थल में भी तू, दसों दिशाओं में की तरफ नतमस्तक अर्जुन कब होता है? अर्जुन दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक तब होता है जब भगवान कृष्ण उसको अपने निज स्वरूप का बोध करा देते हैं, वो ज्ञान चक्षु दे देते हैं। तो यहाँ पर भी विधि वही ज्ञान ही है, कि एक ज्ञान जब तक नहीं मिलता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक इंसान भ्रम में रहता है। तो इस सत्य जिसके साथ नाता जोड़ के कोई सही मायनों में भक्त बन सकता है, इसी सत्य की अगर पहचान ही ना हुई, इसका बोध ही नहीं हुआ, तो फिर तो बाकी सब केवल तस्वुर और ख्याली बातें ही रह जाएंगी। जैसे एक मिसाल अरसे से सुनने को मिली, बाबा गुरुवचन सिंह जी अक्सर दिया करते थे कि कोई औरत है, उसके अगर अभी बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है और उसको हम लाख कहते रहे कि बच्चे से प्यार कर, बच्चे का ख्याल कर, बच्चे को समय से दूध दिया कर, अपनी ममता उसके ऊपर निछावर कर, जितना मर्जी कहते रहें, जब तक वो दरअसल माँ नहीं बनती है, और जब माँ बन जाती है तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ममता रख, वो ममता अपने आप ही जाग जाती है, क्योंकि अब बच्चे को जन्म दे दिया है, अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ख्याल रखती है, ध्यान जाता है बच्चे की तरफ। लेकिन जब तक बच्चा नहीं पैदा हुआ था, उस वक़्त लाख हम कहते रहे, वो केवल ख्याली बातें होती हैं। तो इसी तरह से जब तक ये प्रभु को जाना नहीं, यही जो सर्वत समाई हुई परम सत्ता है, अर्जुन ने भी नहीं जाना था, भगवान कृष्ण के जिस्मानी रूप को जानता था, रिश्तेदारी भी थी, सखा मित्र भी, वहाँ तक तो उसके मन में आदर सत्कार का भाव था, लेकिन दरअसल असल और असलियत ये भगवान कृष्ण ने खुद कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जनाई, जैसे कि मीराबाई को रविदास जी ने जनाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर विधि यही बताई जा रही है कि जब तक इस सत्य का बोध नहीं होता है, जब तक इसको अंग संग नहीं जानेंगे, जब तक कण कण में कैसे व्याप्त है ये नज़र नहीं हमें मिलती है, तब तक हमारी केवल ख्याली बातें होंगी, केवल अनुमान होंगे, और वही अनुमानों के अंतर्गत ही इंसान सार इस सफ़र को तय कर रहा है। इसीलिए जब प्रभु के बारे में पूछा जाए तो कोई आसमानों की तरफ इशारा कर देगा कि वो ऊपर बैठा हुआ है, और हैरानी की बात कि वही इंसान उसी की ज़ुबान से ये भी सुनने को मिलता है कि तू कण कण में है। एक तरफ कण कण में कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि ऊपर है। अब दोनों चीज़ें तो सत्य नहीं हो सकती हैं, यानी कि वहाँ पर अनुमान है, बोध नहीं जुड़ा हुआ है साथ, वो जानकारी नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन जिसको बोध हो जाता है उसकी ज़ुबान कहती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है, कि वास्तविकता में तेरे जलवे ले रहा हूँ। और जलवे वही ले पाता है जिसके पास निगाह होती है, नज़ारे वही ले पाता है जिसके पास नज़र होती है। नज़र के बगैर नज़ारे कैसे? जलवा नुमाई इसकी वही देख पाता है जिसको वो निगाह मिल जाती है। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि पहले निगाह मांग, निगाह तो मिले, नज़र तो मिले, नज़र है नहीं तो नज़ारा कैसा? जिस बेचारे की आँखें नहीं हैं, आँखें तो हैं लेकिन उसमें वो रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है तो वो क्या नज़ारा ले? ना हरा ना लाल ना पीला, ना पर्वत ना सागर, ना पेड़ ना पौधे, ना इमारतें, ना शक्लो सूरतें, कुछ भी तो नहीं देख पाते हैं, केवल अंधकार ही छाया होता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है शायर भी और भक्त जन भी कि दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि पहले वो निगाह हो, वो नज़र हो, नज़र मिल गई तो नज़ारा भी मिल गया। तो इसलिए वो निगाह मिली अर्जुन को, वो ज्ञान की निगाह मिली, वो ज्ञान दृष्टि मिली, और उस ज्ञान की दृष्टि से ही जब दर्शन किए जो सबसे विराट है, तो दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया। तो इस तरह से महापुरुष संत जन भक्त जन उस तरफ हमें मोड़ते हैं कि हमने पहले इस प्रभु परमात्मा निराकार का बोध हासिल करना है, और फिर इसी का रंग हमारे मन पे चढ़ जाएगा। जैसे वो बच्चा पैदा हुआ तो ममता जाग गई, ममता अपने आप ही स्थापित हो गई उस मन में, माँ के मन में वो ममता पूरी तरह से जाग उठी जब बच्चा पैदा हुआ। इसी तरह से जब इससे नाता जुड़ा, इस हरि से नाता जुड़ा, जब प्रभु से नाता जुड़ा, तो तभी वास्तविकता में हमारे मन में सही मायनों में वो इसके प्रति एक वो भाव पैदा हुआ, वो जागृति के तहत हुआ, वो एहसास तभी उस प्रकार का जागा। क्योंकि अब हकीकत में ये तमाम पहलू हमारे जीवन में आ गया, अब केवल जिक्र नहीं है, केवल वर्णन नहीं है, अब ये सच्चाई जीवन में आ गई है। अब ये प्रभु परमात्मा निराकार ये अंग संग ये नज़र आ रहा है, किसी तरफ भी मुख कर लूँ, किसी तरफ भी मुख कर लूँ, ये विराजमान है। तो इस तरह से फिर भक्त इसी के रंग में रंगा हुआ, इसी के एहसास में ये इस जीवन के सफ़र को तय करता है। तो आओ सत्संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि भक्तों महापुरुष संत जनों की वाणी वो यही तो पुकार पुकार कर कहती है हर इंसान हर मानव को कि इंसान पहले तू ये कदम उठा ले, पहले तू ये नाता जोड़ ले, इस हरि को जान ले, और वरना अगर ये समय हाथों से निकल गया तो फिर तेरी कोई बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि काल करंता अबे कर अब करता सोइताल, कि कल का करता आज कर और आज का करता अभी कर ले। ये कल पे छोड़ने लायक बात नहीं है, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष इसी के कारण है, ये लोक का सवरना भी इसी के कारण है, इसको कल पे मत छोड़, ये आज ही करना होगा, आज का अभी करना होगा। इसलिए महापुरुष संत जन एहसास कराते हैं कि इंसान भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं इतविध भयो कंगाल। कहते हैं कि सबकी गठड़ी लाल है लेकिन गांठ खोल देखत नहीं। ये गांठ कौन सी है? ये अज्ञानता रूपी गांठ है। जब तक ये अज्ञानता रूपी गांठ खुलेगी नहीं, तो वो मोती जो पड़े हैं, जो संत कह रहे हैं भीखा जी के भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, सबकी गठड़ी में लाल है, ये नहीं कहा कि कुछ की गठड़ी लाल। जब मालिक ने ये जन्म दे दिया इंसानी और अपना अंश नूर आत्मा के रूप में शरीरों में धर दिया, यानी कि सबकी गठड़ी लाल, सबकी गठड़ी में लाल है, और सबके करीब परमात्मा है, लेकिन गांठ खोल देखत नहीं। गांठ खुलेगी नहीं तो कंगालता दूर होगी नहीं, वो दौलत हाथ आएगी नहीं। मीराबाई के हाथ आ गई, इसीलिए नगर नगर घूम के कह रही है कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो, कि अमोलक वस्तु मेरे हिस्से में आ गई है, अब मैं दौलत वाली हो गई हूँ। राजा के घर पैदा होने के कारण नहीं, राजा से संबंध बना इसके कारण नहीं, ये सच्ची दौलत मिली तब मैं अमीर हुई हूँ, ये सच्ची अमीरी मेरे हिस्से में आ गई है। तो वही बात कि सबकी गठरी लाल, गांठ खोल दे कतने इतविद हो कंगाल। एक और जगह पर महापुरुष कबीर जी कहते हैं कि मार्ग मोती बिखरे अंधा निकस्यो जाए, ज्योत बिना जगदीश के जगत उलहंगे आए। कि मार्ग में मोती बिखरे पड़े हैं लेकिन अंधापन है, और वो कीमती मोतियों को पाँव के नीचे रौंद कर आगे निकलते जा रहे हैं कंकर मानकर, नहीं जानते कि ये मोती हैं क्योंकि अंधापन है। मार्ग मोती बिखरे अंधा निकसे हो जाए, ज्योति बिना जगदीश के जगत उलंघे आए। कि इसी तरह से संसार में अक्सर इंसान इस समोलक जनों को पाकर, मूल्यवान श्वासों को, अमूल्य श्वासों को पाकर भी फिर भी इस दौलत से वंचित रहता है। तो महापुरुष संत जन इसीलिए प्रेरणा देते हैं कि हम पा लें इस सच की दौलत को, पा लें इस हरि को अंग संग जान लें, इसी के रंग में रंग कर ये बेरंगे का रंग अपने मन के ऊपर चढ़ा लें, और जिसके ऊपर ये रंग चढ़ जाता है वही सही मायनों में भक्ति के रंग में चढ़ने वाला हो जाता है, वही भक्ति भरा जीवन जीने वाला बन जाता है। और इस प्रकार से इसी भक्ति की अहमियत, इसी की विशेषता है, जहाँ पर केवल भोलापन होता है, जहाँ पर केवल विनम्रता होती है, जहाँ पर केवल सहनशीलता विशालता होती है, सबर संतोष होता है। जब आए संतोष धन सब धन धूली समान, वहाँ पर ये सबर संतोष होता है, वहाँ पर विशालता होती है, वहाँ पर सहनशीलता होती है, इसी प्रकार से वहाँ पर भोलापन होता है, चतुराई नहीं होती है, चालाकी नहीं होती है। चतुराई और चालाकी ये नहीं होती है भक्ति के मार्ग पर, ये केवल यहाँ पर एक सादगी होती है, एक स्वच्छता होती है, एक निर्मलता होती है, एक बालक के समान एक भोलापन होता है। इस तरह से ये भक्ति जो सही मायनों में है, वरना तो संसार जैसे दास ने पहले कहा कि चतुराइयों का इस्तेमाल करता है। बुल्ले शाह जी ने भी एक जगह पर कहा, उनके हम सूफी भक्तों महापुरुषों के हम वचन अक्सर पढ़ते सुनते रहते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि तेरा दिल खिडावे मुंडे कुड़ियां, तू सजदे करे मसीती, ओए दुनियादारा रब दे नाल भी तू 400 बीसी कीती। तो इस प्रकार से इंसानों को यही बताया कि ये चतुराइयां करता है इंसान, जगह जगह पर चालाकियों का सहारा लेता है। एक वो बात ध्यान में आ गई कि किसी तरह से एक इंसान जा रहा था और सड़क पर देखा कि ट्रैफिक रुका हुआ है, एक बड़ा सा ट्रक नज़र आ रहा है, भीड़ जमा है। अब वो चालाक, उसके मन में ख्याल कि मैं जाकर देखूं क्या वो माजरा है, क्या हुआ है, क्या घटना घटी है, तो वो पीछे से भीड़ को चीरता हुआ जा रहा है और कहे जा रहा है रास्ता दो, रास्ता दो, ये जो घटना हुई है वो मेरा रिश्तेदार है, सब रास्ता दे रहे हैं कि इसका रिश्तेदार है, इसको खबर मिल गई होगी। फिर आगे जाता है, फिर रास्ता नहीं मिला, आगे से हट जाओ, ये जो आगे घटना हुई है वो मेरा रिश्तेदार है। तो जब वहाँ घटना स्थल पर पहुँच जाता है तो क्या देखता है कि उस ट्रक के नीचे गधा आया हुआ आता है। तो सारे कहते हैं संभाल ले अपना रिश्तेदार। तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी चतुराइयाँ और चालाकियों का इंसान सहारा लेते हैं, ये नहीं जानते कि मुँह की खानी पड़ती है। तो अब साध संगत भक्ति में तो विशेष कर ये चतुराइयाँ नहीं चलती हैं। यहाँ पर एक दिल एक मन जो पूरी निर्मलता से युक्त है, जो प्रेम से युक्त है, जो श्रद्धा से युक्त है, जो किसी के प्रति मन में द्वैत का भाव नहीं रखता है, द्वेष का भाव नहीं रखता है, जो सही मायनों में हितकारी है, हित मांगता है, हित सोचता है हर किसी का, जो विनम्र है, जहाँ पर अहम नहीं है कहीं अपने दौलत का, इलम का, लियाकत का, ताकत का, किसी चीज़ का भी मान नहीं है, विनम्र है, तो इस प्रकार से ऐसी अवस्था वाले ही उत्तम होते हैं, वही सही मायनों में भक्त होते हैं। और ऐसी भक्ति हर किसी के हिस्से में आए, यही शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय का जो निश्चित था तकरीबन हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं, और सर्दियों के दिन हैं और सब ने अपने अपने स्थानों को लौटना भी है। तो इसलिए जहां तक शब्दों का वचनों का सवाल है, तो शाम से ही सत्संग चल रहा है और यहां पर कितने सुंदर ढंग से गीत कविता व्याख्यान आपने सुने, तो दास ने केवल वही लड़ी को आगे बढ़ाया है, वरना तो वही भाव जो दास रख रहा है वो तो शाम से ही चल रहे हैं। तो इसलिए शब्दों को और आगे ना बढ़ाते हुए दास आपसे इजाज़त चाहेगा और फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ राजस्थान की इस यात्रा के दौरान यहाँ टोंक में भी आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई है। और यही अरदास कि दातार कृपा करे कि आप सभी को ऐसा सुंदर जीवन जीने की तौफीक दे, सभी इस नाम के भक्ति के रंग में रंगे रहें, सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए इस निराकार दातार का जिक्र भी करते रहें, जो पाया है इसका जिक्र भी करते रहें, और साथ ही साथ दातार तन मन धन के सुख भी प्रदान करे। तो इसी प्रकार से चारों तरफ हर प्रांत में आप जैसे ही भक्तजन अपने अपने इलाकों में रहकर ऐसी ही भक्ति निभा रहे हैं और संसार तक भी यही सत्य का संदेश दे रहे हैं। जो भी सालाना संत समागम नवंबर में हुआ दिल्ली में, तो आप में से जो वहां उपस्थित हुए, देखा कि ये आपका परिवार कहां कहां बसा हुआ है, कहां आसाम से, कहां अंडमान निकोबार आइलैंड से, कहां त्रिपुरा से, कहां शिलांग से, कहां पर उड़ीसा से, बंगाल से, नागालैंड से, कहां गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, कहां कहां से वहां पर उपस्थिति थी, जहां उन्होंने अपनी अपनी भाषा में ऐसा ही बयान दिया जैसे आज राजस्थानी भाषा में भी ये उत्तम भाव श्रवण करने को मिले। तो इस प्रकार से आप भी राजस्थान के इन इलाकों में या हर जगह पर जहाँ जहाँ पर भी बसते हैं, इसी प्रकार से ये सत्य का पैगाम देते चले जाएं और दातार सबको तन मन धन के सुख भी प्रदान करे। सत्संग जी धन का सत्संग।